ओम शांति। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। लेकिन दुआएं ऐसी चीज हैं जो हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती हैं, लेकिन जीवन में दुआएं एकत्रित करना उसमें मेहनत भी है, और जब दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो हम दुआएं सबसे पहले कहाँ से, हमको दुआएं किससे मिलती हैं? परमात्मा से मिलती हैं, और आत्माओं से मिलती हैं, और प्रकृति से मिलती हैं, और सबसे पहले दुआएं हमें अपने आप से मिलती है। बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, श्रीमत अनेक प्रकार की श्रीमत दी है, अगर हम उस श्रीमत का पालन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं की सेटिस्फैक्शन रहेगी, स्वयं के मन की जो तरंगे हैं वो हमेशा हमको शांत शीतल बनाकर रखेंगे। अगर हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, बाबा ने बताया ना, सुनने वाले और समाने वाले, केवल सुनते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं, और उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने के लिए जितना हमको पुरुषार्थ करना चाहिए वो अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें स्वयं से दुआएं मिलेंगी? तो स्वयं से दुआएं नहीं मिलेंगी तो बाकी किसी से नहीं मिलेंगी। इसलिए स्वयं से दुआएं लेना ये सबसे मेहनत वाला काम है, कि हमारा दिल गवाही दे कि मैं जो कर रहा हूँ जो वो बाबा की श्रीमत अनुसार, ईश्वरी मर्यादाओं के अनुकूल हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो स्वयं की बददुआएं ही हमारे पुरुषार्थ का विघ्न बन जाती हैं, पुरुषार्थ में रोड़ा डालती हैं। वास्तव में हमारे जीवन में विघ्न कोई दूसरा कभी नहीं होता है, हम स्वयं ही हमें अपने लिए विघ्न क्रिएट करते रहते हैं। हमारे छोटे विचार, कमजोर विचार, हीन भावनाएं, हमारी अपनी अमर्यादित जीवन शैली, ये हमारे जीवन में विघ्न बन जाती है। और जब हम उन विघ्नों से नहीं निकल पाते हैं तो फिर दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि इनके कारण हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक तो स्वयं से बददुआएं हमने इकट्ठी कर ली, और दूसरे भले मुख से ना कहें लेकिन हम उनके बारे में सोचते भी हैं तो उनकी भी बददुआएं हमको लग जाती हैं। तो दुआएं, हमारे जीवन में दुआओं का स्टॉक भरपूर रहे उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुआएं वही दे सकता है जो भरपूर है, जिसके मन बुद्धि में व्यर्थ की, नेगेटिव की आने की कोई मार्जिन ही नहीं है, भरपूर खजाना है। इसलिए कहा जाता है अधजल गगरी शलकत जाए। अगर हमारा जीवन आधा अधूरा है, अर्थात खजाने हमारे पास पूरे नहीं हैं, तो कभी ना कभी हम धोखा खा लेते हैं। बाबा ने जन्मते हर बच्चे को खजानों से भरपूर कर दिया, इसलिए मुरली की शुरुआत में बाबा क्या कह रहे हैं कि सर्व खजानों के संपन्न आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सर्व खजानों के मालिक खजानों से संपन्न आत्माओं के मिलने के लिए आए हैं। अविनाशी खजाने हैं, अकुट खजाने, अर्थात उसने हमें सारा कुछ दे दिया है लेकिन हम उसको समय पर यूज नहीं करते हैं, और यूज करने के लिए पहले उसका स्मरण चाहिए, स्मृति चाहिए, याद चाहिए कि ये हमारे पास खजाने हैं, और दूसरा उन खजानों के ऊपर हमारा मालिक बना चाहिए। अगर खजाने हैं और उनको यूज़ करने की विधि नहीं है, तो वे होते हुए भी जैसे नहीं है। करोड़ोपति हैं लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो धन ही दुख का कारण बन जाता है। जिंदगी भर भागदौड़ करते रहते हैं, अनेक तरह के कमाई के संसाधन एकत्रित करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और हम खाया पिया नहीं उसका, तो क्या फायदा उसका। इसलिए बाबा कहते तीन प्रकार के बच्चे देखे, कौन कौन से। एक वो हैं जो कमाया खाया पिया मौज किया और ख़त्म, और दूसरे प्रकार के हैं खाया पिया भी मौज भी किया भी लेकिन थोड़ा सा जमा भी किया। और तीसरे प्रकार के बच्चे कमाया खाया भी मौज भी किया जमा भी किया लेकिन बढ़ाया भी सारा। तो जो भी हमको खजाने मिलते हैं उन्हें हमें बढ़ाने के तरीके सीखने के, कैसे खजानों को बढ़ाएं। और उसके लिए बाबा ने कहा वो खजाने सबसे पहले स्वयं के प्रति लगाने हैं, स्वयं को बांटना सीखना है। दूसरों को चीज देना बड़ी आसान है लेकिन स्वयं उस चीज का सदुपयोग करना, उसका वास्तविक सुख अनुभव करना, उसके लिए थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ती है। तो भगवान के महावाक्य जो हैं ये वास्तव में हमारे लिए एक मुरली, एक आईने की तरह काम करती है कि हमारी ये जो ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, जो हम संपूर्णता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं मुरली सुनने के बाद पता चलता है कि अभी तक बहुत दूरी बाकी है। ज्ञान सुनते सुनाते हैं, योग करते रहते हैं, सेवाओं में भागदौड़ भी करते रहते हैं, लेकिन जब मुरली से रूबरू होते हैं, बाबा के महावाक्य कानों में पढ़ते हैं और बाबा फिर कैटागरी बताते हैं, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तो पता चल जाता है हम कहाँ हैं। तो मुरली जैसे हमें एकदम आईना दिखा देती है कि वास्तव में हमने अपने जीवन को, इन खजानों को कितना लाया है। और मुरली एक अग्नि की तरह भी है, उसी आईने को देखकर जब हमें अपनी कमजोरी की महसूसता होती है तो अंदर में पुरुषार्थ के प्रति आग लग जाती है कि नहीं, आज से हमको ये करना है, जो बीत गया सो बीत गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आज से जो बीता बीता छुट्टी, लेकिन अभी से एक नया पुरुषार्थ शुरू करना है, उन खजानों का सुख, उन खजानों को बढ़ाने की विधि, खजानों को बांटने की विधि, जमा करने की विधि, वो हमें स्वयं ही अख्तियार करनी है, स्वयं ही तैयार करनी है। वो तो मुरली एक अग्नि की तरह भी है, अंदर में आग लग जाए जैसे कि हाँ हमको थोड़ा पुरुषार्थ अभी करना चाहिए। समय किस गति से बढ़ता जा रहा है और हमारी स्पीड कैसी है। बाबा कहते हैं ना समय आपकी रचना है, और वो समय पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है कि मेरे रचता मेरे मालिक कहाँ पहुँचे हैं। तो वो रचना है और हम रचता हैं। अब रचना आगे जा रही है और रचता पीछे है, तो रचना मुड़ मुड़ कर देख रही है। प्रकृति भी बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, कब मेरे मालिक आए तो मैं उनका स्वागत करूं। लेकिन हम हैं कि तैयार होते ही नहीं है। इतना बाबा रोज हमको अमूल्य खजानों से संपन्न करने के लिए अनेक तरह के तरीके बताते हैं, पुरुषार्थ की विधियां बताते हैं, हमारे मन का शुद्धिकरण करने के लिए तरह तरह की युक्तियां बताते हैं, फिर भी अगर हम सचेत नहीं होते हैं और अज्ञानता का पर्दा, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता के पर्दे के अंदर सोए रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको समझदार कहेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात समझदार, अर्थात कौन सा समय चल रहा है, मेरा जीवन किस लिए है, क्यों हमने भगवान का हाथ पकड़ा है या भगवान ने हमको क्यों चुना हुआ है। अगर ये चीज़ें हम हमारी स्मृति में नहीं है तो इस ब्राह्मण जीवन का हम सुख नहीं ले सकते। हमारे जीवन का महत्व कितना बड़ा है, भगवान ने हमें पकड़ा है तो हमारे जीवन का इस संसार के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी तो उसने पकड़ा है। तो जो भी बाबा से हमको खजाने मिलते हैं वो खजाने हमारी आमदनी का स्रोत हैं, कमाई का जरिया है, लेकिन वो खजाने अपना बनाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अर्थात जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारा स्वभाव है, जो भी हमारी चाल चलन है, वो सारे खजाने हमारे नेचुरल नेचर बन जाएं, इसमें हमारे स्वभाव संस्कार में वो खजाने स्वतः दिखाई देने लगे। अर्थात जो बोल हमारे पहले होते थे, लौकिक वाले बोल, व्यर्थ वाले बोल, नेगेटिव बोल, किसी को दुख देने वाले बोल, वो सारे समाप्त हो जाएं, एक नई ऊर्जा का समावेश हमारे बोल में हो जाए, अलौकिकता का, सुख देने का। अर्थात जो भगवान के महावाक्य चलते हैं उसके अनुरूप ही हमारी वाणी चलनी चाहिए। अभी लास्ट में मुरली चली 3 तारीख को, बावनी का कहा, बोल कैसे होने चाहिए? मधुर, मीठे वाले, परिवर्तन करने वाले, उत्थान वाले। तो उसमें हमारा उत्थान हो, हमारी उन्नति हो, पुरुषार्थ में नवीनता हो, जीवन जीने का मजा आए, उमंग उत्साह वाले बोल हों, तो कितना हमें अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। तो हम साधारण आत्मा नहीं है, कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे हैं। किस धरा पर बैठे हैं? जिस धरा पर इस यज्ञ की आधार स्तंभ दादियां इतनी साधना करके गए हैं, ये साधारण स्थल थोड़ा नहीं है। तो ऐसे कुल की हम आत्माएं हैं, ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं, संसार को नई दिशा देने के लिए, संसार के दुखों को हरने के लिए भगवान ने हम सबको चुना है। तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग रहना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए। तो आज बाबा ने कितने खजाने दिए हम सबको? खूब खजाने दिए। कितने दिए? अखुट दिए। लेकिन मुरली में कितने थे आज? वो तो अखुट हैं ही हैं, आपकी बात राइट है, 5। और कोई बताओ? 5 थे। ज्यादा थे, कम थे? 6, 7। 7 खजाने थे। एक और भी है, और कौन सा है? खुशी का भी है। और खुशी का खजाना कहाँ से पैदा होता है? सेवा से। तो बाबा ने हम सबको सबसे पहले क्या दिया? खजानों का अखुट, खजानों से संपन्न बना दिया। और उनको खजाने हमारे पास हैं तो बाबा ने उसकी निशानी बताई। क्या निशानी होगी? अगर खजाने हमारे पास हैं तो चेहरा चमकेगा, प्राप्ति संपन्न होंगे, खुशी होगी, भरपूरता दिखाई देगी। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, एक राजा का बच्चा बचपन में, उसको खजाने का पता भी नहीं होता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता तो ना पता होते उसके चेहरे पर चमक रहती, क्योंकि संस्कार ही ऐसे हैं। तो हमारे संस्कार कैसे हैं? जो भगवान के संस्कार हैं वही हम बच्चों के संस्कार हैं। तो भगवान का चेहरा कभी मुरझाया रह सकता है? तो हम भी कौन है? बाबा कहते तुम भी भगवान भगवती हो, तो हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? खुशी से भरपूर, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, संतुष्टता से भरपूर। पिछली मुरली, संतुष्ट मणियों की चमक, वो लहर फैलाओ सब जगह। तो जब हम खजानों से भरपूर होंगे तभी तो संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे। अगर हमारे पास खजाने नहीं है, खाली पड़ा, तो कैसे होंगे? तो भरपूरता दिखाई देगी, वो उनको रूहानी नशा होगा, रूहानी खुमारी चढ़ी रहेगी, रूहानी फकर होगा, बेफिक्र बादशाह होंगे, किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि खजानों से भरपूर है। फिक्र किसको होता है? जिसके पास थोड़ा कम है। तो भगवान ने हम सबको खजानों से संपन्न बना दिया। तो सबसे पहला खजाना कौन सा दिया? ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान का खजाना तुमको स्मृति में आ गया कि यह ज्ञान का खजाना मिला। अब इस खजाने, ये खजाना मिलने से हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ, उसका हमको चिंतन करना है। तो ज्ञान मिलने से क्या क्या हो गया? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो किस चीज से मुक्ति हो गई? दुखों से मुक्ति हो गई, विकारों से मुक्ति हो गई, और व्यर्थ से, विकर्म से, विकल्पों से। बाबा ने कहा ना, लौकिक और अलौकिक जीवन का अंतर देखो, कितना अंतर पड़ गया, पहले वाला जीवन और अभी का जीवन, पहले के संकल्प अभी के संकल्प, पहले के विचार अभी के विचार, पहले के बोल अभी के बोल, कितना फर्क पड़ गया। तो इस ज्ञान कौन सा मिला? और सत्य असत्य का ज्ञान मिला, प्रकाश अंधकार का मिला, जहाँ प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ अंधकार ठहर नहीं सकता है। तो ज्ञान के खजाने से जो भी हमारे मन, जो हमारा मन रस्सियों से बंधा हुआ था, वो सारी रस्सियाँ टूट गई, क्योंकि ज्ञान एक शस्त्र की तरह काम करता है। बाबा कहते हैं ज्ञान एक तलवार है, ये तलवार हमारे सारे बंधनों को काट देती है। कौन कौन से ऐसे अभी बंधन हैं वो हमको देखना, स्वयं ही जांच करनी है। और बंधन भी दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होते जा रहे हैं। स्थूल बंधनों से तो निकलना आसान है, लेकिन सूक्ष्म बंधन है, मन के बंधन, मन के स्वयं के संकल्पों के बंधन, व्यर्थ सोचने की आदत का बंधन पड़ गया हुआ, व्यर्थ बोलने की आदत का संस्कार पड़ गया हुआ है, वो भी बंधन हम सबको बांध के रखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि लोहे के जंजीर तो काट दी, सोने के भी काट दी, लेकिन अभी डायमंड की, हीरे की जंजीर है, उसको थोड़ा आसान काम थोड़ा नहीं है, चमक रही है। मान लो किसी ने हमको अंगूठी दी, कोई गिफ्ट में मिल गई, सौगात में, सोने की अंगूठी, और बोले दे दो, देंगे? 50 बार सोचेंगे क्यों दें हम, है ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रायल एक अलौकिक बंधन मन को बांधे रखे। बाबा ने कहा हिसाब किताब अभी नया नहीं बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हम नए हिसाब किताब बनाने नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा में अभी भी शक्ति नहीं भरी है, वो खजानों से संपन्न नहीं हुई है। जब तक हम खजानों से संपन्न नहीं है, तब तक हम बंधनों में बंधे ही रहेंगे। तो स्वयं को ज्ञान के खजाने से इतना संपन्न बना लेना है कि कोई भी बंधन हमको बांध नहीं सके। स्वतंत्र पंची, अधीनता समाप्त, पिछले संडे का स्लोगन था ना, अधीनता समाप्त, स्वतंत्रता। परवशनी, आज भी वरदान में ना परवशनी बनना है। तो ज्ञान के खजाने से संपन्न, ज्ञान क्या है, एक रोशनी है ये, ज्ञान हमारे जीवन का श्वास है ये। अगर ज्ञान ही नहीं है तो योग भी कैसे लगेगा। तो पहला खजाना ज्ञान, ज्ञान से संपन्न होंगे तो फिर दूसरे खजाने का रस अनुभव होगा। और दूसरा खजाना कौन सा है, याद का। याद से क्या मिलता है, शक्तियां। कितनी शक्तियां, बाबा ने कहा वो तो सैंपल के रूप में अष्ट शक्तियां, लेकिन कितनी शक्तियां मिली, सर्वशक्तियां। कौन कौन सी हैं सर्वशक्तियां, तो उसकी लिस्ट बनानी है कौन कौन सी सर्वशक्तियां हैं। आठ शक्तियां तो याद होंगी, लेकिन उसके अलावा क्षमा करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, हाँ जी, एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुनने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, और निर्भयता की शक्ति, सामना करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। और समेटने की शक्ति किसमें होती है, हाँ, तो बाबा के एग्जाम्पल देते हैं। और आज कौन सी शक्ति बताई थी मुरली में, एक समाने की, एक है सुनना, दूसरा है समाना। तो अनेक प्रकार की हमको शक्तियां मिली है, पवित्रता की शक्ति। तो क्या वो शक्तियां समय पर काम में आती हैं, शक्तियां तो हैं लेकिन समय पर, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, क्या उसमें हम चुप रहते हैं, और उसमें कोई भी संकल्प भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी संकल्प नहीं आना चाहिए, तो हमारे मन से दुआएं निकलना आरंभ होगी। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, आगे बड़े ज्ञानी योगी फलाना ढिमका कुछ बोल दिया, अब लंबे समय से हम ठीक ठाक चल रहे हैं ज्ञान में, और किसी ने सबके सामने कुछ बोल दिया और मन में एक भी संकल्प नहीं आए, बल्कि उसमें रहम हमारे अंदर जागृत हो, तो निकलेंगी दुआएं। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी बोल दिया और अंदर से हमारा हलचल आ गया, अर्थात ज्ञान की कमी है, ज्ञान के खजाने से संपन्न नहीं है, वो ज्ञान शक्ति के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। एक है ज्ञान सुनना, लेकिन दूसरा उस ज्ञान को समाना, वो ज्ञान शक्ति बन जाए। जैसे भोजन करना, लेकिन भोजन हमारी शक्ति बन जाए। अगर भोजन कर लिया और शक्ति नहीं बनी तो उस भोजन का कोई फायदा नहीं होता है, तो दुबले पतले रहेंगे। तो बाबा के महावाक्य भी हमारी बुद्धि का भोजन है। तो हम सवेरे सुन लेते हैं और उसको पचाते नहीं है, हजम नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो ज्ञान की ताकत नहीं बनेगी हमारे में, वो शक्ति नहीं आएगी, समय पर काम में नहीं आएगा। नहीं तो समय पर याद तो आएगा, लेकिन वो कार्य नहीं करेगा वो। तो ज्ञान का खजाने से संपन्न है तो फिर याद की शक्ति भी काम करेगी। याद की यात्रा से परमात्म शक्तियां हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमेशा हमारे लिए कार्य करती रहेगी। फिर जो भी विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों से हम सेफ रहेंगे, क्योंकि परमात्म शक्तियां जैसे एक सुरक्षा दीवार का काम करती हैं, वो शत्रुछाया का काम करती हैं। जब भी योग में बैठते हैं ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट याद आते हैं, ताकतवर शक्तिशाली, तो मन अपने आप ही शक्ति हो जाता है कि नहीं, शक्तिशाली बन जाता है। अच्छे अच्छे पावरफुल सुमान आते हैं तो कैसे नींद उड़ जाती है, तो वो शक्ति का काम कर रहा है। लेकिन वो शक्ति निरंतर हमारी कायम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शत्रु सामने से आ गया और हमारे पास तलवार तो है लेकिन चलाने का आइडिया ही नहीं है उसको, तो जैसे वो शस्त्र होते हुए भी काम नहीं करेंगे। तो वो ज्ञान हमारे लिए शक्ति का काम कर जाए, वो परमानेंट हमारी कर्मिंद्र में समा जाए। भावने का ज्ञान का एक एक बिंदु कर्मिंद्र में समा जाना चाहिए। तो ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे तो शक्तियां भी निरंतर कार्य करती रहेगी, उन शक्तियों का हम रस अनुभव करेंगे। तीसरा खजाना कौन सा बताया? धारणा द्वारा गुणों का खजाना, दिव्य गुण जो हमारा स्वरूप है वास्तविक में। तो धारणा कितने प्रकार के गुणों की धारणा है? बाबा ने तो बोल दिया है? सर्वगुण। सर्वगुण में कितने? 16 कला, वो तो कलाएं हैं। 36 गुण, 56 गुण, 100 गुण। चलो 36 गुण कौन कौन से हैं? यहां बोर्ड लगा हुआ था ना, अभी पता नहीं है यार, बाहर है तो कौन कौन से 36 गुण उसमें? अच्छा, अगर अभी आपको होमवर्क लिखने सभी लिख देंगे 36 गुण, तो अभी माया आ जाए तो फिर कैसे होगी? गुण तो है ही नहीं हमारे पास, तो अभी याद करेंगे 36 गुण। ठीक है, बड़े दिन हो गए हमने भी याद नहीं किया, लेकिन अभी इकट्ठे याद करेंगे सभी। ठीक है, तो अंतर्मुखता सबसे पहले, फिर दूसरा अनुशासन, अथक आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, धैर्यता, दूरदर्शिता, गंभीरता, गुणग्राहकता, रमणीकता, कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक बोला, 12 हो गए, 3 तो आप खा गए बीच में ही, चलो ठीक है, हजम कर ली 3 उन्होंने। उसके बाद नम्रता, न्यारापन, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्भयता, निश्चिंतता, नियमितता, निरहंकारिता, हाँ हल्कापन आगे आएगा, हल्कापन और हल्का से, ह से दो हैं, दूसरा कौन है ह से, ऐसे याद करना, हर्षित मुक्ता, राइट, और रहम दिल, और यथार्थता, श्रेष्ठता, स्नेह, सहयोग, साहस, क्षमा भी है, ठीक है, रहम दिल आगे ना, क्षमा और रहम दिल एक ही हो गया, और कितने हो गए? 24 हो गए माता जी? 16 हुए? नहीं 16 क्या, अभी आप खा गए, पहले उन्होंने खाए, अभी 8 आप खा गए। तो नम्रता, 9 से 7 हैं वो, नम्रता, न्यारापन, निरहंकारिता, निश्चिंतता, निर्भीकता, एक और है उदारता, पहले हो गया ईमानदारी, उदारता आ गया पहले, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठता, शांति, ने हल्कापन भी हो, हल्कापन, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, रमणीकता, धैर्यता, दूरदर्शिता, आज्ञाकारी हो गया, आज्ञाकारी, अनुशासन, आत्मविश्वास। तो ये सब लिखना सारे योग में बैठे बैठे 36 के 36 याद करनी, ऐसे सोचना 36 गुणों की माला पहननी है। तो हमने बहुत दिन हो गए भी याद नहीं, इसलिए भूल गए जा रहे कितने, तो 36 के कई बार हम योग में यही करते थे, 36 गुण याद करने और 36 शक्तियां याद करने की, तो देखना एकदम शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। क्योंकि खाली योग माना चिंतन चलना चाहिए, मन बुद्धि को काम देना है, अगर मन बुद्धि को काम नहीं देंगे तो ठंडा होकर बैठे रहेंगे बस, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और धीरे धीरे बिंदु ही हो जाएंगे एकदम। तो मन बुद्धि को काम देना है, क्योंकि वो ज्ञान रमणीकता वाला है, और योग में जब हम ज्ञान को याद करते हैं तो वो ज्ञान परमानेंट हमारे संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा लिंक जुटा रहता है ना बाबा से। हाँ, योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन ये चिंतन करने की अवस्था भी हमको योग की चरम अवस्था तक पहुंचाने का माध्यम बन जाती है। अगर बिना चिंतन के हम योग करते हैं तो हमारा योग बड़ा लड़खड़ाता योग रहता है, इसलिए चिंतन करते करते धीरे धीरे वो बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, उसके स्नेह का एक गहरा अनुभव होने लगता है, अपने आप ही अश्रु धारा बहने लगी कि सचमुच भगवान का कितना उपकार है कि वो सब ये याद करा रहा है। उसकी कृपा तभी तो याद आता ना, नहीं तो खाली हम बैठे रहते हैं तो उसकी कृपा पास में आके भी चली जाती है। तो तीसरा खजाना है धारणा द्वारा सर्व दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में दिखाई देना चाहिए। दिव्य गुणों की खुशबू से वातावरण भी खुशबूदार होना चाहिए, दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ इनके जो गुण हैं वो अभी विशेष गुण हैं, पहले वाले अब गुण समाप्त हो गए, अब ये नए नए अलौकिक रूहानी फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरा खजाना कौन सा हो गया? धारणा द्वारा दिव्य गुणों का खजाना। और चौथा खजाना सेवा द्वारा खुशी का खजाना। अब सेवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, कितनी सेवा होती है? सबसे पहले स्व की सेवा। स्व की सेवा से खुशी मिलेगी तो हम दूसरों की सेवा भी खुशी से कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेले अपने आप को फुल चार्ज कर लो, तो वो है अपनी सेवा। अपने आप को फुल चार्ज कर लिया तो दूसरों को सेवा करने का, दूसरों की सेवा करने का अपने आप ख्याल आएगा। बाबा ने कहा खुद भरपूर हो तो दूसरों की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। अगर हम खुद खाली हैं तो दूसरों की सेवा करने के लिए हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। तो पहले सवेरे सवेरे अपने आप को परमात्म शक्तियों से फुल चार्ज कर लेना है, ताकि उस चार्जिंग की, उस चार्जिंग का प्रकाश अपने आप ही फैलता रहे। वो दूसरों को देने के लिए हमको संकल्प ना करने पड़े, बल्कि जैसे बाबा की स्थिति और हमारी स्थिति इक्वल हो जाए, बाबा की समान स्थिति होगी तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर नीचे हैं तो फिर कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी कम ज्यादा। तो तीसरा खजाना है सेवाओं का, तो सो की सेवा करनी है। सो की सेवा कौन सी? दो प्रकार की सेवा सो की, एक है स्थूल सेवा, दूसरा है सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा है हमारे ये बाहरी जो शरीर दे रहा है, इस शरीर की कर्मेंद्रियों से हम जो स्थूल सेवा करते हैं, और दूसरा सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा कौन सी है? ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं इनको संपूर्ण, इनका शुद्धिकरण करना, इनकी संपूर्ण, इनको संपूर्ण पवित्र बनाना, इनका पवित्रीकरण, दिव्यकरण। अर्थात ये हमारी कर्मेंद्रियां सेवा का माध्यम है। ये आंखें क्या हैं? खिड़कियां हैं। अब इन खिड़कियों में जाले लगे रहेंगे, बिकारों के जाले, तो क्या होगा फिर? बाबा ने कहे ये आंखें लाइट का गोला न वो है, ये आंखें भगवान का साक्षात्कार कराने का माध्यम है, ये अलौकिक दृष्टि देने का माध्यम है। बाबा ने कहा अंत में ऐसा समय आएगा तुम्हारी दृष्टि से आत्माओं की एकाग्रता तुरंत बढ़ जाएगी। तो क्या इन आंखों को हमने उतना निर्विकारी बनाया है, उतना पवित्र बनाया है? तो इन कर्मेंद्रियों से हमको बात करनी है। बाबा कहते आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, और अधिकतर हमारे विचार तो बाद में, जैसे पहले किसी को देखा तो दिमाग तो बाद में, मन तो बाद में काम कर गया, लेकिन जो आंखों ने विचार पैदा कर दिया अंदर में, मन को एक्टिव कर दिया। तो इन आंखों में देखना है कि मैं बाबा को कितना समय समा के रखता हूं, वो पवित्रता का सागर मेरी आंखों में समा गया है, तो ये आंखें संपूर्ण पवित्र बन चुकी हैं। ये पहले वाली दृष्टि वाली आंखें नहीं है। हाँ, बाबा ने बोला भी है ज्ञान का खजाना है तो विकार आते भी उन पर आप जीत पा सकते हो। अगर आंखें हैं और ऐसा वैसा दृश्य दिखाई देता है तो तुरंत हम ब्रेक लगा सकते हैं उसमें। तो स्वयं को परमात्म पवित्रता से, स्वयं की आंखों को, स्वयं की दृष्टि को इतना शक्तिशाली, प्योर, शुद्ध, पवित्र बना देना है कि दूसरों पर दृष्टि देते ही उनको भी थोड़ा अनुभव हो। नहीं तो हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। हमारे जीवन में अगर बदलाव ही नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरे क्या सोचेंगे कि इतने सालों से चल रहे हैं, इनके जीवन में दिखाई नहीं दिया तो हमारा कैसे होगा? तो कदम कदम पर हमको बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो तीसरा खजाना कौन सा है? सेवाओं का। तो स्वयं की सूक्ष्म सेवा, ये गुप्त सेवा है, मनसा सेवा, दूसरों की, स्वयं की भी मनसा सेवा, स्वयं के संपूर्ण रूप को देखना है। बाबा जी बताया ना, जैसे ये मुरली क्या है? आईना है। बाबा हमें संपूर्ण रूप से अवगत कराते हैं कि तुम ये लक्ष्मी नारायण, आज की मुरली में था ना लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य रखा तुम बच्चों ने विश्व महाराजन महारानी बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का, लेकिन लक्षण है ही नहीं है। तो देखना कि मैं ये सामने हूं, संपूर्ण हमारा रूप, फरिश्ता रूप या वो विष्णु चतुर्भुज का, वो मेरे में समा रहा है। देखना उसमें और मेरे में कितना डिफरेंस है। अभी अगर मैं अभी विष्णु चतुर्भुज हूं तो विष्णु चतुर्भुज क्रोध कर सकता है? वो रो सकता है? वो मूड ऑफ कर सकता है? घर में किसी से गुस्सा हो सकता है? वो बुरी दृष्टि से देख सकता है? वो झूठ बोल सकता है? तो क्या वो कितने डिस्टेंस है फिर हमारा उसमें देखना है। तो वो मेरे में समा रहा है। तो मुरली हमको एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह है, हमारा अपना ही भविष्य का साक्षात्कार कराती है कि हमारी यात्रा कहाँ तक, अभी हमने उसको पूरा किया है, कहाँ तक तय की है, कितना बाकी है वो। तो सेवा करनी है स्वयं की भी सेवा, स्वयं की कर्मेंद्रियों को परमात्म प्यार से, परमात्म शक्ति से, परमात्म गुणों से, परमात्म खजानों से इतना संपन्न बना लेना है कि चलते फिरते हम स्वयं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। जीवन मुक्ति अवस्था अर्थात फ्यूचर की तो है ही है, लेकिन अब भी अनुभव करनी है वो। ब्राह्मण जीवन की जीवन मुक्ति की अवस्था देवताओं की जीवन मुक्ति की अवस्था से ऊंची है। तो तीसरा के जाना कौन सा हो गया, सेवा। फिर स्थूल सेवाएं हैं, जो भी हम सेवाएं करते हैं तो उन सेवाओं से कितना क्या मिलता है, उसे खुशी मिलती है। और खुशी तब मिलेगी, एक है थोड़ी खुशी, एक है ज्यादा खुशी। अगर हम नियमित भाव समझकर सेवा करते हैं, ट्रस्टीशिप है उसमें, अपना स्वार्थ नहीं है कोई भी, सोचने कि बाबा मेरे से ये सेवा करा रहा है, मेरा कितना परम सौभाग्य है कि भगवान ने इस सेवा के लिए मुझ आत्मा को चुना है, तो खुशी निरंतर रहेगी, अविनाशी खुशी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। नहीं तो अस्थाई खुशी रहेगी, टेम्परेरी खुशी रहेगी, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। कितना परम सौभाग्य है कि घर से थोड़ा टाइम निकाल कर भी भगवान ने इस यज्ञ में हम सबको सेवा के लिए बुलाया है, ये कम बात थोड़ा नहीं है। कोटों में कोई में भी कोई आए हैं, निकलना तो सभी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, तो हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। तो सेवा भी एक खुशी एकत्रित करने का माध्यम है। एक है सेवा से खुशी मिलती है, दूसरा है खुशी से सेवा करते हैं, दोनों में से कौन अच्छा है? हाँ, खुशी होगी तो सेवा अपनी आप ही हो जाएगी। हम खुशी के लिए सेवा नहीं करते हैं, खुशी खुशी सेवा करते हैं। तो खुशी हमारा निजी संस्कार है। क्यों खुशी खुशी सेवा करते हैं? एक भाग्य बनता है और अपना परिवार है ये, अपने परिवार की तो खुशी खुशी सेवा करनी होती है ना। बच्चा बीमार है तो माँ बड़ा दुख होगी, उसको उसकी सेवा करेगी क्या? खुशी खुशी करेगी ना वो, तो उसको त्याग अपना त्याग नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी खुशी की सेवा करते हो, परिवार है, और परिवार से दुआएं एकत्रित करनी है, बाप की दुआएं, परिवार की दुआएं, और उससे बताया पहले स्वयं की दुआएं। तो चौथा खजाना हो गया कौन सा, सेवा द्वारा खुशी का खजाना। और पांचवा खजाना कौन सा है, संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का खजाना। अब ये खजाना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो देखना है के संबंध संपर्क में आते हुए हम दुआएं अर्जित कर रहे हैं, दुआओं के खजाने से संपन्न बन रहे हैं। जैसे बताया ना, अगर किसी ने कुछ बोल दिया संबंध संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम तो सूखे सन्यासी नहीं हो, गर्गिस्त में रहना है, तोड़ निभाना है, तुम हो बेहद के सन्यासी। कल की मुरली का मुख्य हेडिंग था ना मीठे बच्चे में, तुम बेहद के सन्यासी हो, तो गर्गिस्त में रहना है, सारी जिम्मेवारी निभानी है, घर वालों से जो सुनना वही सुनना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी हमारा दुआओं का खजाना कम नहीं होना चाहिए। और उसका बाबा ने एग्जाम्पल कौन सा दिया दुआओं के खजाने के लिए, अगर कोई क्रोधी क्रोध करता है तो उसको कैसे दुआएं देंगे, वो कभी बंद ही नहीं हो रहा है, 24 घंटे पीछे पड़ रहता है। तो शुभ भावनाएं शुभकामनाएं, बाबा ने कहा याद रखो कि वो क्रोध कर रहा है तो वो आपको स्मृति दिला रहा है कि मैं तो क्रोध कर रहा, मैं तो परवश हूं, लेकिन तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कितना पॉजिटिव तरीके से देखो हमको बताते हैं, तो वहां तो उसको हमारी जरूरत है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। वो गुस्से वाला व्यक्ति, गुस्से वाली आत्मा हमें जागरूक करती है कि आप तो अपने सम्मान में स्थित रहो, मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन तुम तो रहो। तो हर चीज में हमको देखना है, क्योंकि बातें तो सुनने मिलेंगी। बाबा ने कहा ये संसार क्या है, सागर की तरह है, और परिस्थिति तो आएंगी, विघ्न भी आएंगे, लहरें आएंगी, सागर को कहेंगे हे लहर मेरे पास मत आना, टेढ़ी नहीं आना, सीधी नहीं आना, बांकी आना, वो तो आएंगी, बड़ी बड़ी लहरें आएंगी। तो संसार भी क्या है, सागर की तरह है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास दुआएं हैं तो दुआएं क्या काम करेंगी, एक रॉकेट की तरह काम करेगी। बाबा ने बताया ना रॉकेट संसार में वो है, रॉकेट तेज जाता है, लेकिन दुआओं का रॉकेट है, ये क्या करेगा, विघ्न हमको स्पर्श नहीं करेंगे, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, सहज ही हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में योग युक्तियुक्त बन जाएंगे, अगर दुआओं का खजाना हमारे पास है तो। और दुआओं का खजाना है तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमको पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है तो दुआएं कम है, तो दुआओं के खजाना को, खजाने को भरपूर करने के लिए हमें स्वयं देखना है कि सारे दिन में मुझे कहां कहां से दुआएं मिल सकती हैं, देखना है वो। और मधुबन में आए हैं यहां तो दुआओं का भंडार लगा पड़ा है, अर्थात यहां जितना भी टाइम मिलता पूरा टाइम सफल कर रहे हैं। स्थूल सेवाएं और सूक्ष्म, अर्थात वो स्थूल सेवाएं पूरी होती है तो सूक्ष्म सेवा, कितना समय हम ज्ञान योग में बिजी रख रहे हैं, कितना समय दूसरों को मनसा साकाश दे रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, या स्वयं को ज्ञान योग में बिजी रखा हुआ है, ज्ञान का हम चिंतन कर रहे हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं। उसमें फिर बाबा ने दो प्रकार के बचे, तो ये कितना, कौन सा खजाना था, पांचवा, कौन सा, संबंध संपर्क का। और छठा खजाना है समय का खजाना, तो समय को देखना है, सारे दिन में हमारा समय कहाँ वेस्ट चला जा रहा है, बड़ा अमूल्य खजाना है, अगर समय को वेस्ट कर दे तो सारे खजाने गए काम से। और एक और खजाना कौन सा बताओ आप, श्वासों का खजाना है, हाँ अनुभव की अथॉरिटी। अगर ये सारे खजाने हमारे पास हैं तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, और अनुभव कभी भूलता नहीं है। नहीं तो अगर अनुभव नहीं है तो फिर दो प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने, उसमें पहले हैं सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। तो सुनने वाले कौन से हैं, अच्छे कौन है, सुनने वाले या समाने वाले? तो सुनने वाले अच्छे नहीं है, पहले तो सुनना ही पड़ेगा ना, तभी तो समाएंगे। तो हैं, हाँ तभी तो सुनना पड़ेगा, पहले तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा सुनने वाले अर्थात ज्ञान तो सुनते, हमेशा सुनने वाले नहीं रहना है, सवेरे सुना फिर दिन में सारा दिन समाते रहना। तो सुनने वाले क्या बोलेंगे और समाने वाले क्या बोलेंगे, क्या बताया बाबा ने, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके बस भी रहेंगे, साथ साथ चल रहेंगे, बैलेंस रखेंगे सुनने वाले। तो सुनने वाले बाबा का ज्ञान भी सुनते रहेंगे, सोचते भी रहेंगे और सुनाते भी रहेंगे, और बात साथ में बोलते रहेंगे कि नहीं होना चाहिए, पता तो है लेकिन फिर भी बश हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञान की हर पॉइंट का पता होता है लेकिन समय पर वो काम में नहीं आती है। माना एक दिन हमने अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बश हो गए, परवश हो गए, लेकिन अगले दिन फिर भी सुन रहे हैं और फिर भी परवश हो रहे हैं, माना वो परवश से होते रहेंगे, ज्ञान भी सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे, फिर लास्ट में जैसे मन चिंतन करने के बजाय झरमुई जगमुई कर रहे हैं, परचिंतन कर रहे हैं, और लास्ट में बोलेंगे अपने को क्या लेना है इन चीज़ों से, इतना देर कर लिया खिचड़ी पका ली और बाद में छोड़ो, ड्रामा में सबका पार्ट है ऐसे, अरे भाई तो इतनी देर क्यों किया। और जो समाने वाला क्या होगा, वो बशीभूत होगा ही नहीं, वो हमेशा संपन्न रहेगा, क्योंकि उसने खजाने को अपना निजी संस्कार, नेचुरल नेचर, पिछले संडे की मुरली थी ना, नेचुरल नेचर बन जाए। तो समाने वाले बनना है हर एक ज्ञान का पॉइंट, और समाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं तुरंत समा जाते। हाँ अगर हमारी पुरुषार्थ की तड़फ है, पुरुषार्थ की प्यास है, लगन है, तो वो लगन की अग्नि से हम समा लेंगे तुरंत। तो जब भी अगर कोई हमारे सामने नेगेटिव या कोई व्यर्थ चिंतन करता है तो हम उस व्यर्थ चिंतन को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देंगे, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना क्रोधी का, तो ऐसे कोई भी कोई कुछ बोलता रहेगा लेकिन हम खजाने से भरपूर हैं तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, नहीं तो उसके प्रभाव में आगे हमारा सारा पुरुषार्थ पानी में बह जाएगा। इतना अमूल्य जीवन है, इतने भगवान खजानों से हमको संपन्न करने के लिए आया हुआ है, वो अनेका अनेक, बाबा ने वो कहा ना किसी को मैं करोड़ किसी को लाख ऐसे थोड़ा देता हूँ, सबको इक्वल देता हूँ, खजानों की बरसात हो रही है उसकी हमारे ऊपर, तो कितना हमारे ऊपर उसकी दया कृपा है, कितने हम खुशनसीब आत्माएं हैं, तो उन खजानों को हमको जीवन में लाना, तो सारे दिन में इस बुद्धि में खजानों को दौड़ाते रहना है, कौन कौन से खजाने हैं। और फिर एक और खजाना बताया, अब बताओ कौन सा, संतुष्टता, संतुष्टता का खजाना। और जो आत्माएं संतुष्ट हैं वो ही फिर दुआएं दे सकती हैं, और दुआएं देने के लिए दो चीजें बताई बाबा ने, कौन सी दुआएं देने की विधि, दो चीजें, रहम, और एक तो रहम ठीक है, दूसरा हाँ शिक्षा और क्षमा। तो बाबा ने कहा शिक्षा देने की कोशिश करते हो लेकिन रहम नहीं करते हो। मंदिरों में पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? मर्सी करो, रहम करो। तो बाबा ने कहा अगर अब भी रहम नहीं करेंगे तो जड़ चित्र की कैसे मैं रहम करेंगे, अभी रहम करेंगे तो तभी तो भक्ति मार्ग में आपके जड़ चित्रों से मर्सी मांगेंगे वो। तो बताओ जड़ चित्रों से वो मर्सी का अनुभव कर लेते हैं और हम तो चैतन्य हैं। तो अभी से वो शिक्षा और क्षमा का स्वरूप, शिक्षा किसको देनी है? दूसरों को नहीं, स्वयं को। रहम किस पर करना है? दूसरों पर। लेकिन कभी कभी रहम अपने पर भी करना है। पहले तो वास्तव में अपने ऊपर ही रहम करना है। रहम क्या करना है अपने ऊपर? क्या रहम करेंगे, क्या रहम करेंगे? खुद को बदलने का रहम करना है। हाँ, खुद को व्यर्थ के संसार में उलझाकर नहीं रखना है, रहम करना है कि मैं समर संकल्पों से संपन्न बना के रखूं अपने आप को, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक बना के रखूं, हमेशा सर्व शक्तियों से संपन्न बना के रखूं, परमात्म शक्तियों से भरपूर रहूं, चार्ज रहूं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहूं, हमेशा अथक मन करूं, सर्व गुणों से संपन्न रहूं, सर्व खजानों से संपन्न रहूं, तो अपने प्रति भी ये चीज रहम रखनी है। और रहम ही साथ हमारे लिए शिक्षा का काम भी करेगी। और क्या बताया आज की मुरली बाबा ने? हाँ, खजानों को बढ़ाना है। बाबा ने कहा खजानों का मालिक हो तो मालिक होकर खजानों को कार्य में लगाओ। अब खजाना तो है लेकिन मालिक कार्य में लगा तो उसमें खजाने का क्या दोष है? तो खजाना तुम्हारे पास भरपूर है लेकिन मालिक होकर कार्य में लगाना है। और क्या कहा है? दो चीजें बताएं अगर सहज योगी जीवन बनाना है तो। हाँ, मैं और मेरेपन के हद से मुक्त रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो सारे दिन देखना है मैं और मेरापन कितना हमारे अंदर। और क्या बताया? मास्टर क्रिएटर कौन है? हम सभी है ना। साधनों को साधनों के वशीभूत नहीं, साधनों के वशीभूत ना होकर उनको यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर हैं। तो हमको उनके वश नहीं होना है, साधन हमारी साधना का हिस्सा ना बन जाए। हाँ, हैं तो उनको ठीक है यूज करना है लेकिन वो उनके वश नहीं हो जाना है कि ये साधन हमारे पास हो तो मैं योग करूं, ये साधन हो तो मैं सेवा में जाऊं, ये साधन हो तो मैं आगे पुरुषार्थ करूं। नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा ना बन जाए। है तो ठीक है, नहीं है तो उससे भी ठीक है। नहीं तो बुद्धि हमारी साधनों को ना खा जाती है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती, धीरे धीरे ऊर्जा जाती है उनमें। साधन एक परिवार की तरह है, जैसे बच्चे को पालने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, साधन भी ऐसे ही है, चाहे वो मोबाइल है चाहे कुछ भी है वो। तो कितनी सारी बातें बताई बाबा ने, छह खजाने, सात खजाने कौन कौन से है? सबसे पहले ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने से क्या होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति किस चीज से? व्यर्थ से मुक्ति, विकल्पों से मुक्ति, विकर्मों से मुक्ति। और जीवन मुक्ति की अवस्था का अभी अनुभव करना। बाबा ने कहा आप अपने लौकिक जीवन और इस अलौकिक जीवन का अंतर देखो, कितना फर्क पड़ गया अभी। तो ज्ञान अगर है तो वो हम उसकी महसूसता कर पड़ेंगे, करते रहेंगे, उसका अनुभव करते रहेंगे। तो ज्ञान खजाना अर्थात हमेशा मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था की अनुभूति में रहना। ज्ञान खजाना अर्थात जीवन में कोई भी विघ्न आए तो उसको सामना करने की हमारे में समर्थ्य आए, शक्ति आए, उससे घबराना नहीं विघ्नों से। ज्ञान एक प्रकाश की तरह है, ज्ञान एक तलवार की तरह है जो हमारे सभी बंधनों की रस्सियों को काट देता है, मन के सूक्ष्म संकल्पों के बंधनों को, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान के खजाने से हमको हमेशा संपन्न रहना। दूसरा खजाना कौन सा? याद द्वारा सर्व शक्तियां जो बाबा से हमको मिलती हैं तो उसका भी दृश्य क्रिएट करना है कि मैं याद से परमात्म शक्तियों की जैसे मेरे ऊपर बरसात हो रही है और वो सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं और साथ साथ में ये आत्मा को जो रथ मिला हमको भगवान द्वारा सेवा करने के लिए, ये अंतिम जन्म में अमूल्य शरीर है, तो ये भी जैसे परमात्म शक्तियों से इसमें भी अलौकिकता आती जा रही है। सारी परमात्म शक्तियों से शरीर संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा है, ये चलता फिरता एक सेवा का साधन है ये, तो इसका भी शुद्धिकरण करना है। तो परमात्म शक्तियों से भी अपने आप को उस खजाने से भरपूर रखना है। तीसरा खजाना धारणा द्वारा सर्वगुण। कितने गुण? 36 गुण कम से कम तो याद सवेरे तक हो जाने चाहिए, रात को सपने में दिखने चाहिए सारे, है ना। अगर भूल जाए तो सपने में उठ के जैसे हम यहाँ आकर पढ़ रहे हैं ऐसे होना चाहिए सारे 36 के 36 गुण। माना स्टूडेंट लाइफ हमारी, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा ने कहा तुम्हारे कक्ष में हमेशा कुर्म रहनी चाहिए, अर्थात किताब रहनी चाहिए। स्टूडेंट खुश कौन से रहते हैं? जो होमवर्क करते रहते हैं। तो वो 36 गुण काल का होमवर्क, 36 अक्षर तो याद रह सकते हैं ना, और धीरे धीरे फिर उन पर चिंत करना है। जैसे अंतर्मुखता है, तो अंतर्मुखता से हमको क्या क्या फायदे हैं उस पर लिखो। अनुशासन, ब्राह्मण जीवन का अनुशासन क्या है उस पर लिखो। आज्ञाकारी, भगवान से हमको कौन कौन सी आज्ञा मिली हुई है वो देखो। जीवन में अथक कैसे बने वो लिखो। आत्मविश्वास कैसे बढ़े वो लिखो। तो एक एक गुण के फिर भी आगे चिंतन बढ़ता जाएगा। तो तीसरा खजाना कौन सा था? धारणा द्वारा सर्व दिव्य गुणों की माला हमको पहन के रखनी है। देखना वो 36 गुण घूम रहे हैं, मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा खजाना सेवा द्वारा खुशी का खजाना। तो देखना खुशी सारे दिन में मेरी कितनी कायम रहती है, कहाँ कम होती है, कौन से कारण है जिससे हमारी खुशी कम हो जाती है। क्या खुशी को कम करने के लिए मेरे खुद के संस्कार बाधक हैं? खुद की ऐसी आदतें हमने क्रिएट के रखी हुई हैं कि उन आदतों के वश हो जाते हैं और खुशी सारी नष्ट हो जाती है। तो चौथा खजाना हो गया सेवा द्वारा खुशी का खजाना, हमको हमेशा उससे भरपूर रहना। पांचवा खजाना संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का खजाना। तो देखना स्वयं के खजाने में कितनी दुआएं हैं। सबसे पहले स्वयं की दुआएं, परिवार की दुआएं, और बाबा की दुआएं तो हैं ही हैं। बाबा की दुआएं तो सबके लिए हैं, वो तो शुरू से उसने जन्म देते सारी दुआओं से हमको भरपूर कर दिया है। लेकिन वो दुआएं कहीं धुआं धुआं होके जा रही हैं उड़ के, वो धुआं धुआं कहीं हमारे जीवन को गड़बड़ ना कर दे। तो और पांच छठा खजाना समय का खजाना। ये समय संगम युग का सुहावना युग है। पिछले संडे के बाबा ने कहा ना, ये पुरुषार्थ करने का युग है, संगम युग है, पुरुषार्थ करने का युग। इस पुरुषार्थ में सुख समाया हुआ है। और तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बताई थी पिछले संडे के मूल्य में, कौन सी बताई थी? दो शब्द, डैश और डैश, डैश और डैश, सुना और किया, सुना और किया। बाबा के बाके सुने और वो कर दिए, जिसने कर दिया उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और उसमें तो बताया था तीव्र पुरुषार्थी कितने हैं? 8 ही हैं। तो हम कहां पर हैं? बाबा ने कहा कोई बात नहीं, लड़ियां लगा दूंगा बाद में। तो ये समय का खजाना। और कौन सा? अनुभव की अथॉरिटी का खजाना। और कौन सा? संतुष्टता का खजाना। और कौन सा? बाकी बहुत सारे खजाने, समाने का खजाना, सुनना और समाना। तो समाने वाली आत्मा बनना, लक्ष्य और लक्षण समान रखने हैं, समझदार बनने हैं। बाबा ने कहा समझदार को कहा जाता है, जो है ही बेसमझ उसको क्या कहेंगे, समझदार को ही इशारा दिया जाता है। तो बाबा जो भी हमको मुरली में इशारे देते हैं उनको पकड़ना कि हमारे लिए इशारे कितने फायदेमंद है, क्या उनको हम अपने जीवन में ला रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। और सारे दिन में हमको सचमुच टाइम इतना होता है, पिछले 3 तारीख की मूल्य में बाबा ने कहा कितना अमूल्य टाइम का महत्व बताया कि कम से कम पानी पीते हो उसमें तो आप अशरीरी बनने, 1 सेकंड ही अनुभव कर लो, कितनी बड़ी बात है वो। तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा के अभी बैठ जाओ, ये सबसे बड़ी ताकत है। बाबा ने कहा वरदान दिया ना, अशरीरी भव का वरदान, तो इसी वरदान का अनुभव करेंगे जैसे हमें शरीर बनकर सीधा बाबा के पास पहुंच गए। ओम शांति।